27 नवंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूँ रेहान फदल। नरेंद्र मोदी ने गुजरात की चुनाव सभाओं में कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला।
कोई चावे चावे वालों तुम्हारी गादी ले ली थी जो तुम्हारा वारसा मान खा लिए थी।
पाकिस्तान में धार्मिक गुटों के प्रदर्शन के बाद कानून मंत्री जाहिद हामिद ने दिया इस्तीफा।
की तरफ जा रहे थे तो जनरल साहब ने जाती दिलचस्पी ली, अपनी टीम भेजी कि हम इसमें जामिन बनते हैं, आपके मुतालबात जो है वो हम पूरे करवाते हैं। हमने कहा ठीक है। उनकी तरफ से
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गुजरात पहुंचे। वो कच्छ के आशापुरा मंदिर पहुंचे और वहां से अपने प्रचार की शुरुआत की। आज के दिन उन्होंने भुज, राजकोट के जस्तान, अमरेली के धारी और सूरत के कामरेज में चुनावी रैलियां की। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है, ना नीयत है, ना नेता है और ना ही लोगों के साथ उनका नाता है। ब्रिटेन के शाही परिवार ने महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी की शादी की घोषणा की है। अगले साल की शुरुआत में 33 साल के प्रिंस हैरी अपनी अमरीकी गर्लफ्रेंड मेघन मार्केल से शादी करेंगे। 36 साल की मार्केल अमरीकी टेलीविजन कार्यक्रम सूट्स में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं। इस घोषणा के अनुसार प्रिंस हैरी और मेघन की सगाई इसी महीने हो गई है। होंडुरास के राष्ट्रपति खुआन ओर्लैंडो एर्नांडेज ने रविवार को हुए चुनावों में खुद को विजेता घोषित कर दिया है। अगर चुनाव के नतीजों की पुष्टि हो जाती है तो आधुनिक होंडुरास के इतिहास में ये पहली बार होगा जब मौजूदा राष्ट्रपति को दोबारा उसी पद पर चुना गया है। लेकिन एर्नांडेज के विरोधी सेल्वाडोर नसरल्लाह ने अपने समर्थकों से कहा है कि इन चुनावों में वो विजेता चुने गए हैं। मैं चुनाव प्रचार के वक्त से ही कह रहा हूं कि होंडुरास के लोगों की इच्छा को मैं पूरा करूंगा और जनमत का पूरा सम्मान करूंगा। लोगों की आवाज है कि खुआन ओर्लैंडो एर्नांडेज आप अपनी गद्दी छोड़ो। आज मैं लोगों की इस इच्छा को पूरा कर रहा हूं। होंडुरास के नेता सेल्वाडोर नसरल्ला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो अमेरिका में रह रहे इस्लामी मौलवी फतेउल्लाह गुलेन को तुर्की को प्रत्यर्पित करने में मदद करें। पिछले साल जुलाई में हुई तख्तापलट की नाकाम कोशिश के लिए तुर्की फतेउल्लाह गुलेन को जिम्मेदार मानता है। बीबीसी को दिए खास इंटरव्यू में बिनाली यिल्दिरिम ने कहा कि उन्होंने सभी सबूत पेश किए हैं और इसमें संदेह नहीं कि साजिश के पीछे गुलेन का हाथ था। गुलेन अब तक इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। बिनाली यिल्दिरिम के अनुसार तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद सुरक्षा बल के सदस्यों, न्यायाधीशों, पत्रकारों समेत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाना सही कदम था। जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जुलाई 2015 में क्या हुआ था। हमारी संसद में बम धमाका किया गया था। उन्होंने हम पर बम फोड़े और 250 मासूम लोगों को मौत दे दी। 2000 से अधिक लोग उस हादसे में घायल हुए और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें तो इस बात का पता लगाना ही था कि इस जघन्य अपराध को करने वाले कौन हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बनी हादिया आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई। केरल की एक अदालत ने मई में हादिया की मुस्लिम युवक से शादी को रद्द कर दिया था। तब से यह निकाह सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की हादिया को पढ़ाई जारी रखने के लिए तमिलनाडु के सलेम स्थित कॉलेज भेजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में हादिया ने कहा कि उन्हें अपने पिता से आज़ादी चाहिए और वो अपने पति शफीन के साथ रहना चाहती हैं। हादिया के पिता का आरोप है कि हादिया का ब्रेन वॉश किया गया है। पाकिस्तान में कानून मंत्री जाहिद हामिद के इस्तीफे के बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इस्लामी नेताओं ने कहा है कि वो कई दिनों से चल रहे अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी इस्लामाबाद से जाने वाले एक मुख्य रास्ते को बंद कर दिया था और ईश निंदा के आरोप में कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुज से चुनावी रैली की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीब मूल का होने के कारण कांग्रेस मुझे पसंद नहीं करती। मैं कांग्रेस से आग्रह करता हूं कि वो मेरी गरीबी व गरीबों का मजाक ना उड़ाए। कांग्रेस ने चाय वाले का मजाक उड़ाया, वो अब गरीबों का मजाक बना रही है। मैंने चाय बेची, देश नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने बीबीसी गुजराती सेवा के संवाददाता रॉक्सी गगडेकर से बात की और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव रैलियों में क्या कहा।
जी देखिए, आज प्रधानमंत्री ने करीब 4 अलग अलग स्थल पर, अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियां की है। उसमें से सूरत, कच्छ और ये सारे एरियाज को कवर किया है। खास करके साउथ गुजरात की जो बात करें, नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा विकास का नहीं रहा। वो मुद्दा फिर से वही आया कि भाई कांग्रेस ने हमेशा गुजरात के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, अत्याचार किया है और गुजरात के विकास में हमेशा अवरोध डालने की कोशिश की है। ऐसा मोदी साहब ने आज, नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैलियों में एक मोटे मोटे तौर पर उन्होंने ये सारी बातें कही थी। उन्होंने अलग अलग मुद्दों को छेड़ा, जिसमें नर्मदा का मुद्दा खास रहा और जो अभी जो गुजरात में पाटीदार आंदोलन चल रहा है, जो दलित आंदोलन चल रहा है, जो ओबीसी का आंदोलन था, उन सारे आंदोलनों को उन्होंने एक जातिवाद का नाम दे दिया कि ये जातिवाद का जो जो फीलिंग्स है वो कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने आज अपने जो उनसे पहले जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे केशुभाई पटेल और आनंदीबेन पटेल, जो उनके बाद चीफ मिनिस्टर थी, इन दोनों का नाम लिया और उन दोनों की सरकारें हैं उनको पीस टेबल करने के लिए, उनको हिलाने के लिए कांग्रेस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ऐसा नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा।
अच्छा अच्छा, रॉक्सी ये बताएं कि ये तो रही बातें जो उन्होंने की, लेकिन कैसा रिस्पांस रहा, जो पब्लिक थी वो इसको किस तरह से ले रही थी, लोगों ने इस भाषण को किस तरह से लिया।
जी देखिए, अभी एक तरह से हम लोग अभी सूरत की, यहाँ पर सूरत की रैली में थे जो कड़ोदरा में है, उस रैली में मैं लोगों से बात कर रहा था। लोगों में बहुत उत्साह है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो इलेक्शन का, जो डेमोक्रेसी का जो पर्व है, जो वो पर्व की शुरुआत एक तरह से नरेंद्र मोदी के आने से, एक फिर से लोगों में बिल्कुल जो एक निराशा भाजपा के कार्यकर्ताओं में थी, बिकॉज कांग्रेस बहुत स्ट्रांग चल रही थी अभी तक, तो उसकी वजह से जो लोगों में निराशा थी कार्यकर्ताओं में, वो थोड़ा अभी जोश में आ गए हैं। आज हम लोग लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने कहा कि जीएसटी का मुद्दा हो या डीमोनिटाइजेशन का मुद्दा हो या फिर पाटीदारों का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे को लेकर भाजपा को कॉर्नर करना मुश्किल है और भाजपा इन सब मुद्दों से लेकर, भाजपा जो पार्टी है वो हारेगी नहीं और इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करेगी। ओवरऑल जो देखा जाए तो लोगों में एक काफी उत्साह देखने को मिला यहाँ पर हर जगह सूरत में।
ये थे गुजरात से बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गगडेकर। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सुशील मोदी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिए जाने से बवाल उठ खड़ा हुआ है। लालू यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद की सुरक्षा वापस लेना उनकी हत्या कराने की साजिश है, हम, उनके शब्दों में, नरेंद्र मोदी की खाल उधड़वा देंगे। मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के एक आपत्तिजनक टिप्पणी से आज दोपहर बाद बिहार का सियासी पारा जाड़े के मौसम में भी चढ़ गया।
तो ये मर्डर कराने की साजिश रची जा रही है, उनको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, नरेंद्र मोदी जी का खाल उधरवा लेंगे, नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे हम।
आपने जिस तरह से सुशील मोदी पर बयान दिया था,
खबरों के मुताबिक लालू यादव सहित कुछ दूसरे नेताओं की सुरक्षा में केंद्र सरकार ने कटौती की है। बिहार भाजपा के कई नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार में मंत्री मंगल पांडे ने बीबीसी से कहा,
लालू जी का थोड़ा थोड़ा ही नहीं बल्कि पूरा पूरा गुण तेज प्रताप जी में दिखाई पड़ता है और यह लोकतंत्र की मर्यादा का हनन है और लोकतंत्र में कभी भी इस बात की इजाजत संविधान नहीं देती। कि आप प्रधानमंत्री को शारीरिक क्षति पहुंचाने की बात करें और आज तेज प्रताप जी ने जो बयान दिया है यह बहुत आपत्तिजनक है कि प्रधानमंत्री जी को शारीरिक क्षति पहुंचाने का उन्होंने बात कहा है। देश और राज्य की जनता उनकी स्थिति को देख सुन रही है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, समय आने पर जवाब दे देगी।
हाल के दिनों में बिहार के कुछ नेताओं के विवादित बोल सामने आए हैं। यह दूसरा मौका है कि जब तेज प्रताप ने कुछ आपत्तिजनक कहा है। इसके पहले उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निशाना बनाते हुए टिप्पणी की थी। वहीं तेज प्रताप के पहले बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद नित्यानंद राय ने भी एक धमकी भरी टिप्पणी की थी, हालांकि इसके बाद उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
अंग्रेजी पत्रिका द कैरेवन ने हाल में खबर प्रकाशित की थी कि सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई की विशेष अदालत के जज ब्रजगोपाल हरकिशन लोया के परिजनों ने उनकी मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया है। लातूर शहर के बार एसोसिएशन ने लोया की मौत की जांच को लेकर एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है ताकि सब कुछ साफ हो सके। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
कैरवा की रिपोर्ट के बाद से कुछ रिटायर्ड जजों, वकीलों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने जज ब्रजगोपाल लोया की मौत की जांच कराने की मांग की थी। अब लातूर बार एसोसिएशन ने एक शांति जुलूस निकालकर ब्रजगोपाल लोया के मौत की परिस्थितियों की जाँच की मांग की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अन्ना राव पाटिल,
न्यायमूर्ति लोया जी की जो मृत्यु हो गई उसकी तहकीकात होना जरूरी है। जो केस उनके सामने था सडनली उनकी मौत हो गई। लोया जी को ये इस पीरियड में किसके किसके फोन आए और लोया जी का जो मृत्यु हो गई उस दिन का पूरा कौन आदमी था जिसने उनकी डेड बॉडी ली, उसने कजिन लिखा है, कौन कजिन है, उनकी डेड बॉडी लातूर तो कैसे आ गई, पोस्टमार्टम करते वक्त उनके पास उनका कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं था तो क्यों किया गया, ये भी तहकीकात होनी चाहिए।
मृत जज ने लातूर कोर्ट में 8 साल तक वकालत की थी। उस समय उनके साथ काम कर चुके वकील उदय गवारे ने कहा,
उनका 1 दिसंबर 2014 को मृत्यु हो गया। तो उनके घर वालों ने और उनके बहन ने पूरी हकीकत बता दी। तो उसके बाद हमने क्विक एक्शन लेके शुक्रवार को रेजुलेशन पास करके ऐसा तय कर दिया कि इसकी इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज के तहत।
लातूर अदालत से निकलकर शांति मार्च जिलाधिकारी के कार्यालय तक गया और फिर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। बार एसोसिएशन का कहना है कि जस्टिस लोया की मौत महज एक जज की मौत का मामला नहीं बल्कि न्यायपालिका पर एक तरह का हमला है। इधर दूसरी तरफ अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने द कैरवा की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। लोया की मौत 1 दिसंबर की सुबह नागपुर में हुई थी जहां वे एक शादी में शामिल होने गए थे। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई है। पत्रिका द कैरवा की रिपोर्ट में कहा गया था कि जज लोया को ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले जाया गया था। इसके अलावा लोया की बहन ने सवाल उठाया था कि दिल का दौरा पड़ने की हालत में उनका ECG क्यों नहीं किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने एक ECG रिपोर्ट भी छापी है। डांडे अस्पताल के प्रबंधकों ने भी अखबार को बताया है कि जज लोया का ECG टेस्ट किया गया था। मगर द कैरवा के राजनीतिक मामलों के संपादक हरतोष सिंह बल ने ट्वीट करके कहा है कि अभी तक के लिए तो इतना ही नोट करना काफी है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो ECG रिपोर्ट छापी है और जिसका हवाला NDTV ने दिया है उस पर तारीख 30 नवंबर की है जो जज लोया की मौत के एक दिन पहले की है। इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई हाई कोर्ट के 2 जजों जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस सुनील शुक्रे से भी बातचीत की है। इन दोनों का कहना है कि वे जज लोया की मौत के समय अस्पताल में मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि दोनों जजों ने माना है कि लोया की मौत की परिस्थितियों में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर शक किया जा सके। जस्टिस शुक्रे ने कहा उन्हें ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले जाने का सवाल ही नहीं है। जज बर्डे उन्हें अपनी कार में डांडे हॉस्पिटल ले गए थे। कैरवा की रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्हें ऑटो से अस्पताल ले जाया गया था। जज लोया अपनी मौत से पहले सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह अभियुक्त थे। लोया के बाद आने वाले CBI जज ने अमित शाह को बरी कर दिया था।
लातूर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। पाकिस्तान में कट्टरपंथी धार्मिक गुटों के लगातार प्रदर्शन के बाद आखिरकार कानून मंत्री जाहिद हामिद को इस्तीफा देना पड़ा। हिंसक प्रदर्शनों के बाद रविवार देर रात धार्मिक संगठनों के लीडर से बातचीत हुई, जिसके बाद प्रदर्शन रोकने के लिए इस्तीफे पर सहमति बनी। हफ्ते भर से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा पुलिस वालों समेत 230 लोग घायल हुए हैं। इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट।
पाकिस्तान सरकार और तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के दरमियान इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर जारी धरना खत्म करने के लिए 6 नकाती समझौता तय पा गया है। तहरीक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान की फौज ने यह समझौता करवाने में अहम किरदार अदा किया है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने खसूसी नुमाइंदे हमारे पास भेजा और मुल्क के हालात जो है वो बड़ी तेजी से खराब होने की तरफ जा रहे थे, तो जनरल साहब ने जाती दिलचस्पी ली, अपनी टीम भेजी कि हम इसमें जामिन बनते हैं, आपके मुतालबात जो है वो हम पूरे करवाते हैं। हमने कहा ठीक है। तो उनकी तरफ से मेजर जनरल फैज हमीद साहब तशरीफ लाए और हमारा मुआहदा उनके साथ हुआ।
खादिम हुसैन रिजवी ने मुल्क भर में होने वाले धरने खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन उनका कहना था कि फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना मजीद 12 घंटे जारी रहेगा और उसी सूरत में खत्म होगा जब सरकार के साथ तय पाने वाले समझौते पर अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फौज की तरफ से सरकार और धरना देने वाली जमातों के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने का सख्त नोटिस लिया है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरने के बारे में लिए गए सुओ मोटो नोटिस की सुनवाई करते हुए रिमार्क्स दिए कि आर्मी चीफ की आजादाना हैसियत क्या है, वो कैसे धरना देने के मामले में एग्जीक्यूटिव का हुक्म मानने के बजाय एक सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं, और अगर फौजियों को सियासत करने का शौक है तो वो नौकरी से मुस्ताफी होकर सियासत में आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी ने भी इस समझौते में फौज के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया है। बीबीसी को अपने खसूसी इंटरव्यू में तलाल चौधरी का कहना था कि धरने में भी उन्हीं लोगों का हाथ था जो नवाज शरीफ की नाअहली के पीछे थे।
हदफ PMLN का वोट है, हदफ जो है वो 2018 का इलेक्शन है और इस हदफ को पूरा करने के लिए पहले डिस्क्वालिफिकेशन हुई और ख्याल ये था प्लानर्स का कि शायद ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है तो फिर उसके बाद इनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं रह सकेगी। उसके बाद यकीनन उन्होंने देखा कि वो पॉपुलैरिटी बढ़ी, हमदर्दी बढ़ी, ये उसके बाद ये अगला प्लान है।
फैजाबाद इंटरचेंज पर पिछले 22 दिनों से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और सुनी तहरीक नामी जमातों का धरना जारी था। अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक कानून में तब्दीलियां की गईं, तो उनमें से पार्लियामेंटेरियन के हल्फ से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद के आखिरी नबी होने से मुतालिक शिक को निकाल दिया गया था। मुजाहरा करने वाली जमातें वजीर कानून जाहिद हामिद को इसका जिम्मेदार समझती हैं और उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी।
हमारा ये मुतालबा है जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
हुकूमत ने मुजाहरा करने वालों के साथ बातचीत के कई दौर किए, लेकिन इनसे कोई नतीजा नहीं निकला। फैजाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाला अहम रास्ता है, धरने की वजह से ये बंद रहा।
इनको अवाम का और लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं है, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए हैं, लोग जॉब पे नहीं जा रहे, लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे, अपने बच्चों को स्कूल पे नहीं भेज रहे। ये क्या ये इस्लाम के नाम पे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और लोगों को बड़ी तकलीफ है, और इस तरह इस्लाम का नाम बुलंद नहीं होता, ये बदनाम होता है बदकिस्मती से।
पाकिस्तान की अदालतों ने मामले का नोटिस लिया और हुकूमत को हुक्म दिया था कि रास्तों को खुलवाया जाए। रात को मुजाहरा करने वालों और हुकूमत का समझौता तय पा गया। फौज इस समझौते में गारंटर बनी। शुमाइला जाफरी, BBC इस्लामाबाद।
इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक ज्वालामुखी के फटने का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण अधिकारियों ने वहां रह रहे कम से कम 1,00,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने की हिदायत दी है। कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और पर्यटकों को ज्वालामुखी की दिशा में जाने से रोका गया है। विभिन्न बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए भूमिका राय से।
माउंट आगुंग ज्वालामुखी हवा में 4000 मीटर तक राख, मिट्टी और धुआं उगल रहा है। खतरा इतना बड़ा है कि अधिकारियों ने सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी जारी की है। इंडोनेशिया के आपदा नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता सुतोपो पूर्वो नुगरोहो ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ज्वालामुखी के कारण लोगों की यात्राओं में व्यवधान पड़ा है।
जब से ज्वालामुखी में हलचल शुरू हुई है, तब से नगुराह राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे करीब 10,000 यात्री प्रभावित हुए हैं।
आपदा नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता सुतोपो पूर्वो नुगरोहो के शब्द। खबरों के मुताबिक ज्वालामुखी लगातार राख और काला धुआं उगल रहा है और उससे दबे दबे विस्फोटों की आवाजें आ रही हैं, जिन्हें 12 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। खासतौर पर रात गहराने पर आग की लपटें दूर दूर तक नजर आती हैं। ज्वालामुखी से निकले धुएं और धूल के कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। कई यात्रियों को इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जॉन निकोलाई ऐसे ही एक यात्री हैं।
मैं थोड़ा परेशान हूं क्योंकि मैंने इंटरनेट पर महज 15 मिनट पहले चेक किया था तो सब कुछ नियत समय पर था, लेकिन अब जबकि मैं यहां खड़ा हूं तो सब कुछ बंद है। मुझे इसकी सूचना काफी देर से मिली।
इसी तरह एक और पर्यटक कार्लो ओबेन ने भी अपनी परेशानी इन शब्दों में बयान की।
हमें कोई सूचना नहीं थी क्योंकि गेट और चेक इन सब कुछ बंद थे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। लगता है हमें पूरी रात यहीं गुजारनी होगी।
भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि ज्वालामुखी में विस्फोट की भविष्यवाणी संभव नहीं है और ये ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता कि किस समय विस्फोट होगा। बाली के एक हवाई अड्डे के मैनेजर ने बताया कि उन्होंने एहतियातन क्या क्या कदम उठाए हैं।
मौसम विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी की चेतावनी के बाद हमने अस्थायी तौर पर एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया।
कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर रिचर्ड ऑर्क्यूलस ने कहा है कि ज्वालामुखी में किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है।
इस समय ज्वालामुखी पर नजर रखने के साथ साथ धरती के कंपन पर भी नजर रखनी होगी। जब पिघलता हुआ मैग्मा छेदों से होकर तेजी से धरती की सतह पर आता है, भीतर बना रहा दबाव कम होता है और ज्वालामुखी राख उगलने लगता है। इस समय यही हो रहा है।
ये थे जियोलॉजिस्ट रिचर्ड ऑर्क्यूलस के शब्द। इससे पहले माउंट आगुंग में 1963 में ज्वालामुखी फटा था जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
बाली में ज्वालामुखी के फटने का खतरा। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ हैं
तृप्ति
श्रीवास्तव जी। हाँ, बहुत आपने पॉज लेकर के अपना नाम लिया। जाहिर सी बात है, याद होंगी आपको तृप्ति, बीबीसी पर कई बार कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। तो आपके पास तृप्ति बहुत सारी चिट्ठियां हैं, ईमेल हैं, बताइए कहाँ से शुरुआत कर रही हैं।
मैं चिट्ठियों से शुरुआत करूंगी जो हमारे श्रोता खास तौर से लिखते हैं, और पोस्टकार्ड्स भी हैं कुछ मेरे पास। सबसे पहले मेरे हाथ में एक चिट्ठी है जो कि उपेंद्र ठाकुर ने लिखी है पिपराकोठा पूर्वी चंपारण से। इन्होंने लिखा है कि सही में बीबीसी तो बेमिसाल है, मुझे ये कहने में तनिक संकोच एवं डर नहीं है कि भारतीय मीडिया एक पक्षीय एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मिथ्या समाचार प्रसारित करता है।
मतलब एक तरफ बीबीसी की तारीफ की है, दूसरी तरफ थोड़ी सी इनको शिकायत है भारतीय मीडिया से। अपनी अपनी पसंद, ख्याल अपना अपना। तो आपकी चिट्ठी यहाँ आई हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लिखते रहिए। हमारे कार्यक्रमों के बारे में भी अगर लिखेंगे तो बहुत खुशी होगी।
कार्यक्रमों के बारे में बिल्कुल लिखा है, आपको नाराज नहीं किया श्रोताओं ने। ये कर्मी राम प्रजापत जी का पोस्ट कार्ड है मेरे हाथ में, जो बागोड़ा जिला जालौर राजस्थान से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भूपेंद्र हजारिका पर आपने जो कार्यक्रम संग सम गुनगुनाओगे, बहुत अच्छा लगा है और ऐसे कार्यक्रम आप और भी करते रहिए।
बिल्कुल, और भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। हालांकि बहुत बार जब किसी कार्यक्रम का बार बार रिपीटेशन होता है तो कुछ श्रोता उस पर अब उनको एतराज भी होने लगता है कि ये हर रविवार को क्यों सुनाते हैं। तो हम एक तरह से इंद्रधनुष आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिसमें तमाम तरह के रंग हो। संग संग गुनगुनाओगे कार्यक्रम में यतीन्द्र मिश्र ने कई अच्छे संगीतज्ञों से आपका परिचय करवाया। हम कोशिश करेंगे कि ये रंग आपके सामने आए।
एक और रंग की बात आप कर रहे हैं तो कार्यक्रम की तारीफ करते हुए राम सर काकुआ बाड़मेर से, उन्होंने लिखा है कि 18 नवंबर को इंडिया बोल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में परिचर्चा करवाई, वो उन्हें बहुत
पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुनते रहिए और अपनी राय जाहिर करते रहिए।
अब मेरे हाथ में कुछ ईमेल्स भी हैं। ये है अर्जुन दास चारण कर्मावास बाड़मेर राजस्थान से, इन्होंने लिखा है जब भी श्री राजेश पायलट का जिक्र आता है तो एक ऐसे शख्स की तस्वीर उभरती है जो ग्रामीण वेशभूषा में किसानों की समस्या को हल करने को तत्पर रहता था। बागपत से श्री चरण सिंह के सामने चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा उनके आत्मविश्वास को दिखाता है।
जी हाँ, ये विवेचना का जिक्र कर रहे हैं जो रेहान फजल ने राजेश पायलट पर भी पिछले हफ्ते ही की थी।
एक और ईमेल है, ये है महेंद्र सहारण का ढांबा झलार श्री गंगानगर राजस्थान से, उन्होंने भी राजेश पायलट के ऊपर जो कार्यक्रम दिया प्रस्तुत किया था उसके लिए तारीफ करते हुए वेशना की तारीफ की है और रेहान फजल जी की भी तारीफ की है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
एक ये ईमेल आया है विकास शर्मा कुरुक्षेत्र से, मुंबई हमले पे रिपोर्ट के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है कि हम बहुत जल्दी चीजों को उनकी प्रासंगिकता उनके आयामों को बिसराने रखते हैं, थोड़ी सी अवधि में आपने वो तस्वीर खोल कर रखी।
ये संदीप सोनी ने 26 नवंबर को जो मुंबई हमले हुए थे उनकी बरसी पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, ये उसके बारे में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि और भी श्रोताओं ने कुछ संदीप सोनी की रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी की है।
जी हाँ, एक ईमेल और है मेरे हाथ में, यह गौतम दत्ता किशनगंज से हैं, जिन्होंने लिखा है कि मेरे साथ कभी कभी मेरी बेटी प्रत्युषा जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ती है अच्छा। वो भी बीबीसी सुनती है और ढेरों सवाल पूछने लगती है। डिस्टर्ब तो होता हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं भी 9वीं क्लास से ही ये सुनता आ रहा हूँ। इन दिनों ज्ञान विज्ञान हमसे पूछिए सुनना मिस नहीं करता था।
गौतम दत्ता साहब, बच्चों को कभी सवाल पूछने से आप रोकिए मत, बल्कि उनको उत्साहित किया जाना चाहिए। जितने सवाल वो पूछेंगे उतना ही उनका मेंटल होराइजन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो दायरा सोच का समझ का वो बढ़ेगा। बीबीसी तो आपकी बिटिया सुनती ही हैं और उनको और उत्साहित कीजिए कि वो ये हमारे कार्यक्रम सुनते रहें।
और ये ईमेल भेजा है गणेश प्रसाद हुजदार ने, 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुए बम हमले की चश्मदीद गवाह देविका का बयान सुनकर डर के मारे दिल दहल गया। मुंबई बम हमले का बयान संदीप सोनी से भी सुनने को मिला और इसकी उन्होंने तारीफ की है।
वो वाकया ही ऐसा था कि दिल दहल जाए। जिसने भी जो वहाँ थे उनकी तो बात अलग है, जिन्होंने सुना देखा उनका भी दिल तब भी दहला और आज भी दहलता है। इस तरह की घटनाओं को हमें बार बार याद करना चाहिए ताकि इनकी पुनरावृत्ति न हो सके।
एक और यहाँ पे मैं ईमेल लेना चाहती हूँ, तमाम लोग हमारी तारीफ करते हैं लेकिन हमारे श्रोता बहुत सजग भी रहते हैं। उन्होंने यहाँ एक सुझाव भी दिया है भूल के बारे में, उन्होंने हमें बताया सेमारा चंद्रौली महाराजगंज उत्तर प्रदेश से आशुतोष मिश्रा ने लिखा है कि मैं बीबीसी का कार्यक्रम पहले रेडियो पर और अब ऑनलाइन सुनता हूँ। उन्होंने 26 नवंबर को खेल समाचार में हुई एक भूल की ओर ध्यान दिलाया है, लिखते हैं कि पीवी सिंधु खिताब चूकने से जीत गई जबकि कहा जाना चाहिए था खिताब जीतने से
चूक गए। बिल्कुल, ये तो जिसे फिर से मैं वही जुमला दोहराऊंगा, अंग्रेजी का मुहावरा स्लिप ऑफ द टंग, यानी जबान फिसल जाती है साहब, हम लोग भी इंसान हैं। लेकिन आपने इस तरफ ध्यान दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तृप्ति समय नहीं है, इसलिए जो ईमेल आपने ली है अपने हाथ में, मैं क्षमा चाहता हूँ उन सभी साथियों से जो सुन रहे हैं कार्यक्रम को लेकिन उनकी ईमेल हम नहीं ले पाए। अगली बार ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ईमेल्स को हम शामिल करें। फिलहाल मैं पता बता दूं।
बिल्कुल, आप पता बताइए।
तो हमारा डाक का पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
खेल समाचारों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन ये तो हम बता सकते हैं कि नागपुर टेस्ट में भारत ने जीत दर्ज की है श्रीलंका को और 1-0 से आगे हो गया है। भारतीय टीम पहली पारी में 405 रन बढ़त हासिल करने में कामयाब रही। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 166 रन बना पाई। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गुजरात पहुंचे। होंडुरास के राष्ट्रपति खुआन ओर्लैंडो हर्नांडेज ने रविवार को हुए चुनावों में खुद को विजेता घोषित कर दिया है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो अमरीका में रह रहे इस्लामी मौलवी फतेहउल्ला गुलेन को तुर्की को प्रत्यर्पित करने में मदद करें। जिम्बाब्वे में अधिकारियों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय अवकाश होगा। इंडोनेशिया में अधिकारियों ने बाली के अगुंग पर्वत के नजदीक रह रहे 1,00,000 लोगों को इलाका छोड़कर सुरक्षित जाने के लिए कहा है। उनका कहना है कि पर्वत पर मौजूद ज्वालामुखी कभी भी फूट सकता है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।